آپ ایس بی ایس اردو کے ساتھ ہیں۔
سامعین، ٹیکس کا وقت آ چکا ہے۔ جب بھی نیا مالی سال شروع ہوتا ہے تو اکثر سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ ٹیکس ریٹرنز کیسے فائل کیے جائیں۔ اس سلسلے میں ایس بی ایس اردو پر آپ مختلف اقساط میں اس کے بارے میں معلومات بھی لے رہے ہوں گے، لیکن آج کی قسط میں ہم خاص طور پر بات کریں گے کہ یہ نیگیٹو گیئرنگ کا کانسیپٹ کیا ہے، اور اس کا اکثر ہم ذکر سنتے ہیں، اور کس طرح سے جو پراپرٹیز ہیں ان کو آپ اپنے ٹیکس نیٹ کے اندر لاتے ہیں، اور اس کی آمدنی کو آپ کس طریقے سے ایک ٹیکس ایجنٹ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور وہ آپ کے ساتھ اے ٹی او کے ساتھ شیئر کرنے کے بعد آپ کو آپ کے ٹیکس ریٹرن کے بارے میں معلومات فراہم کرتے ہیں۔ آج کے اس پوڈ کاسٹ ایپیسوڈ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں اویس علی سید، ٹیکس فیکٹر سے، اور ایک رجسٹرڈ ٹیکس اکاؤنٹنٹ ہیں وہ۔ بہت شکریہ اویس ایس پی ایس سے بات کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آخر یہ نیگیٹو گیئرنگ، یہ رینٹل پراپرٹی اور یہ پراپرٹی، یہ سب کچھ کیسے چلتا ہے؟ ایک بندہ ایک نوکری کر رہا ہے، اس نے یہ ساری چیزوں کو کیسے لے کر چلنا ہے؟
دیکھیں افان، اس کا لائک جو بھی ہائی انکم ارنر ہوتے ہیں تو آبویسلی وہ کافی ٹیکس پے کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کی فرسٹ اپروچ یہ ہوتی تھی پہلے، کیونکہ اب نئے لا کے حساب سے کافی چینجز آ گئی ہیں، لیکن ان دا پاسٹ یہ ہوتا تھا کہ جو ہائی انکم ارنر اپنی ٹیکس کا جو نیگیٹو گیئرنگ کے تھرو کافی ٹیکس ریفنڈ حاصل کرتے تھے، اس کے لیے کافی چیزیں تھیں جو ٹیکس کلیمیبل تھیں، جس میں جو میجر پورشن ہوتا تھا وہ جو مورگیج ہوتا تھا ان کا انٹرسٹ وہ پے کرتے تھے، تو وہ ٹیکس کلیمیبل ہوتا تھا، پلس اگر کوئی پراپرٹیز ہوتی تھی جو کہ نئی پراپرٹی ہوتی تھی اس کے اوپر وہ ڈیپریسیشن رپورٹ بنوا کے اور اس کا ڈیپریسیشن کلیم کرتے تھے، اور اس سے علاوہ جو بھی رننگ ایکسپینس ہوتے تھے پراپرٹی کے وہ اس میں کلیم کر کے اس کو نیگیٹولی کلیم کر کے ایکسپینسز کو، تو وہ اس کا وہ امپیکٹ لیتے تھے اپنے ٹیکس ریٹرن میں، جو کہ ان کو فائدہ ہوتا تھا، جس کا ان کا ٹیکس ریٹرن زیادہ انکریز ہوتا تھا۔
اس سلسلے میں ویس، اگر اس کو ایک مثال کے طور سے اگر واضح کریں گے تو شاید سامعین کو ویژولائز کرنے میں جو ہے اس کو تصوراتی طور پر اسے محسوس کرنے میں زیادہ آسانی ہو۔
ہاں بالکل، میں اس کو بہت زیادہ سمپل اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ فار ایگزامپل اگر کسی کا انکم ہے 100,000 کی انکم ہے، $100,000 کی اس کی انکم ہے، اگر اس کا نیگیٹو گیئرنگ ہو رہی ہے، جیسے جتنی رینٹل انکم آئی ہے اس سے زیادہ اس کا 10,000 سے زیادہ کا خرچہ ایکسٹرا لگ گیا ہے جو کہ رینٹل انکم سے زیادہ ہے، تو اگر نیگیٹو گیئرنگ 10,000 کی ہے تو ان کے جو ٹیکسیبل انکم ہوگی وہ 90,000 کی ہوگی، لیکن انہوں نے ٹیکس جو دیا ہوا ہوگا وہ 100,000 پہ ٹیکس دیا ہوا ہوگا، جو بھی ان کا مارجنل ٹیکس ریٹ ہوگا جو 10,000 کے اوپر اس کا امپیکٹ آئے گا، فار ایگزامپل اگر 32% کا ان کا ٹیکس ریٹ ہے تو وہ $3,200 ان کے ٹیکس ریٹرن میں ایکسٹرا ریفنڈ ہو جائیں گے، تو یہ بہت سمپل انڈرسٹینڈنگ ہوتی تھی جو کہ ہم اپنے کلائنٹ کو بھی سمجھاتے تھے۔
صحیح، اور اس کے اندر آپ جب نیگیٹو گیئرنگ کی بات آتی ہے تو حال ہی میں بہت سارے قوانین تبدیل کر دیے گئے ہیں، تو اس کا کیا اثر پڑے گا؟
دیکھیں اس کا کافی امپیکٹ آئے گا، جیسے ابھی جیسے نیا لا ہے اس میں یہ ہے کہ نیگیٹو گیئرنگ کو آلموسٹ ختم ہی کر دیا پرانی پراپرٹیز کے اوپر، جنہوں نے پراپرٹی لی بھی ہے اگر وہ ہولڈ کر سکیں، وہ مینیج کر سکیں، تو ہم ان کو یہی مشورہ کر رہے ہیں کہ ان کو وہ ہولڈ کریں جب تک وہ اپنا نیگیٹو گیئرنگ کا امپیکٹ لے سکتے ہیں، لیکن اس میں یہ بھی ایک اور چیز ہے کہ اگر کوئی نئی پراپرٹی میں انویسٹ کر رہا ہے، فار ایگزامپل اب برانڈ نیو ہوم ہے، لینڈ پیکج ہے، تو اس کو بھی وہ کیا کہتے ہیں نیگیٹو گیئر کر سکتا ہے ان فیوچر، اور اس میں کافی چیزیں آئی ہیں، اس میں ایک چیز یہ بھی آئی ہے کہ جیسے ایک اور سوال ہوتا ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار اگر ہم اپنا پرانا گھر خرید کے اس کو ناک ڈاؤن کر کے ری بلڈ کرتے ہیں اس کا کیا امپیکٹ ہوگا نیگیٹو گیئرنگ کے اوپر، دیکھیں اس کا یہ امپیکٹ ہوگا اگر آپ پرانے گھر کو ناک ڈاؤن کریں گے اور اس کو ری بلڈ کریں گے اس کے اوپر آپ نیگیٹو گیئرنگ نہیں لے سکتے، انلیس اگر آپ اس کو ایک اور آپ اس کی ریزیڈینس انکریز کریں، دیٹ مین اگر آپ اس کو ڈوپلیکس بنا دیں گے تو دونوں پراپرٹی کے اوپر آپ اس کو نیگیٹولی گیئر کر سکتے ہیں اپنی انکم کے تھرو، ایک تو یہ اس کا لا چینج ہوا، اور سیکنڈ چیز یہ ہے کہ فرام دا 1st of July 2027 کے بعد سے جو بھی آپ پراپرٹی خریدیں گے یا 16 May کے بعد کسی نے بھی پراپرٹی خریدی ہوگی 2026 کے بعد، اگر پرانی پراپرٹی خریدے تو اس کے بعد وہ نیکسٹ فالوئنگ ایئر سے آپ نیگیٹولی گیئر نہیں کر سکیں گے۔
सही है। और जो आपने कॉन्सेप्ट दिया है नेगेटिव गियरिंग का, उसके अंदर आप उस तरह से नहीं दाखिल हो पाएंगे जिस तरह से आप करते हैं। लेकिन जो नई प्रॉपर्टीज हैं उसकी अगर आप तारीफ बता दें, डेफिनेशन के वो क्या है और किस तरह से काम करती है। जैसे आपने बताया कि पुराना घर तो तोड़ के नहीं बनाया जा सकता, लेकिन अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो एक साल पुरानी है या दो साल पुरानी है, तो क्या वो इस तारीफ पर पूरा उतरेगी?
नहीं, वो भी नहीं उतरेगी, क्योंकि वो आपका ब्रांड न्यू घर होगा। उसमें आपकी अनलेस अगर आपने उसमें कोई रहा नहीं हो, जैसे बहुत सी प्रॉपर्टी बन जाती है और वो वीकेंड होती है कोई, यानी कि फॉर सेल पे होती है, तो आप वो खरीद के आप उसको कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उसमें ऑलरेडी कोई रहा हो उसमें, और उसमें किसी ने कुछ अरसे रहा हो, तो वो आपको क्लेम नहीं हो सकती। बट लेकिन ये है कि इसमें आप अगर फर्स्ट अगर कभी भी आप नई प्रॉपर्टी खरीदेंगे बिल्ड कर, तो उसमें आप उसको नेगेटिवली ग्रेड कर सकते हैं उसको।
अच्छा, इसके अंदर एक छोटी सी चीज बताइएगा कि क्या अगर कोई शख्स एक लैंड लॉट लेता है और उसके ऊपर एक नया घर तामीर करता है इन्वेस्टमेंट के मकसद से, तो क्या वो तमाम जो पैसा है उसको वो नेगेटिवली गियर कर सकता है या नहीं?
हाँ, बिल्कुल कर सकता है। अच्छा, इसमें एक बड़ा अच्छी एक चीज है, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। लोगों को बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शन है इस बारे में। होता यह है कि जब आप लैंड खरीदते हैं ना, तो क्योंकि ऑब्वियसली कंस्ट्रक्शन तो स्ट्रेट अवे आपको लैंड एकदम से आपको रेंटल इनकम देना शुरू नहीं करती, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपने 2026 में लैंड खरीदी, जो फॉल फॉल होगी 2027 फाइनेंशियल ईयर में, और आपने उसको कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की जैसे मिड 2027 के फाइनेंशियल ईयर से, तो उसमें जो कंस्ट्रक्शन के ऊपर जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे होंगे, और अगर और आपकी जो इंटेंशन ये है कि आपको उससे रेंटल इनकम अर्न करनी है, तो उसके ऊपर आप इंटरेस्ट आप क्लेम कर सकते हैं। लेकिन आप जो लैंड के ऊपर लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट पे कर रहे होंगे, वो आप क्लेम नहीं कर सकते जब तक आपकी प्रॉपर्टी एक्चुअली रेंट जनरेट करना शुरू ना कर दे।
मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गया कि अगर एक शख्स $3 लाख की एक जमीन की लॉट कहीं पर खरीद पाता है और वो उसकी अपफ्रंट पेमेंट कर देता है, तो जितनी भी कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट आती है अगर वो कर्ज के ऊपर है, तो उसका जितना इंटरेस्ट है वो नेगेटिव गेयरिंग के तौर पर लेगा। और अगर वो जमीन को कर्ज के तौर पर बैंक से लोन लेगा, मॉर्गेज करवाएगा, तो फिर वो उसका जो इंटरेस्ट है वो क्लेम नहीं कर सकेगा, वो उसे
हाँ,
नहीं
बिल्कुल।
मिलेगा।
हाँ, इसमें सिर्फ 3 आइटम क्लेम हो सकते हैं, सही है, जब तक ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन। एक तो इंटरेस्ट आपका क्लेम होगा, जो कि आप सूद दे रहे होंगे वो क्लेम होगा, या बहुत से इस्लामिक लोन भी लेते हैं उसके ऊपर जो रेंटल पेमेंट और रेट होता है वो आप क्लेम करते हैं। और सेकंड, एक उसमें जो काउंसिल रेट होते हैं वो
बिल्कुल।
आप क्लेम कर सकते हैं, और इसमें वाटर बिल्स के भी आपके रेट्स होते हैं, वो भी क्लेम कर सकते हैं। अदर देन दैट आप वो क्लेम नहीं कर सकते, जैसे कंस्ट्रक्शन में कॉस्ट होती है, क्योंकि वो आपका पार्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होती है, जो कि बेस वैल्यू कहते हैं उसको। जब आप प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो उसका इम्पैक्ट आपका कैपिटल गेन टैक्स में आता है, दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक।
अच्छा, इसके अंदर बड़ा एक दिलचस्प सवाल है, वो ये है कि आप एक घर एक ऐसी जगह पर बना लेते हैं जहाँ पर वो रेंट पर जाने के लिए उसको वक्त दरकार है। मिसाल के तौर पर आपने आपको घर हैंड ओवर हो गया है और अब आपकी अकसात जो है वो कटनी शुरू हो चुकी हैं आपसे, लेकिन आपका घर जो है वो रेंट पर नहीं, जैसे आप कहते हैं किराए पर नहीं लग रहा, तो उस सूरत में वो जितने माह आपके पास मौजूद रहा, एक तो ये बताइएगा कि क्या वो तमाम महीने जो हैं वो नेगेटिव गियरिंग के लिए एलिजिबल होंगे, और दूसरा ये बताइएगा कि उतने महीने उस प्रॉपर्टी को अपने पास रखने के बाद आपने अगर उसको बेच दिया, तो क्या आप गुज़िश्ता जितने माह हैं उनके पैसे आपको देने पड़ेंगे अगर आपने नेगेटिव गियरिंग क्लेम कर ली, जैसे बीच में जून पड़ गया और आपने क्लेम कर ली?
अच्छा, देखें, इसका बड़ा सिंपल सवाल है, आंसर है, सॉरी। इसमें देखें, जब आप प्रॉपर्टी लिस्ट आउट करते हैं ना रियल एस्टेट के थ्रू, रजिस्टर्ड एजेंट के थ्रू आप लिस्ट आउट करते हैं, और आप जिसमें मार्केटिंग में भी पैसे खर्च करते हैं, एडवर्टाइजमेंट में पे कर रहे होते हैं थ्रू द रियल एस्टेट, तो जब तक जब प्रॉपर्टी लिस्ट होती है ना, तो आप वहां से क्लेम करना शुरू करते हैं, सही है, वो आपकी डेट ऑफ आपका क्लेम बनना शुरू हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने प्रॉपर्टी खरीदी आज की तारीख में और आपने उसको मार्केट में लिस्ट कर दिया कल से, सही है, लेकिन आपके पास टेनेंट आपके पास 3 महीने के बाद आते हैं, तो 3 महीने के जो भी खर्चे होंगे वो आप टैक्स क्लेमेबल हैं।
सही
सही, तो वो आप नेगेटिवली गेयर में, जब जो
चाहे
भी
वो
आपका
इंटरेस्ट,
रिपेट
चाहे वो इंटरेस्ट की सूरत में हो, चाहे वो रीपेमेंट की सूरत
सारे
में।
खर्चे, जो जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड खर्चे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर बीच में आपका रियल एस्टेट कहे कि यार आपकी प्रॉपर्टी इस वजह से रेंट आउट नहीं हो रही क्योंकि आपको ब्लाइंड चेंज करवाना है, या आपको कुछ टायर्स उखड़े हुए हैं सही करवाने हैं, कुछ रिपेयर्स करवाने हैं, वो आप रिपेयर्स भी क्लेम कर सकते हैं,
सही सही, लेकिन
ठीक
हम
है।
तो नई प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब चूंकि मुस्तकबिल में
हाँ,
हम नई
अगर
प्रॉपर्टी की बात करें, लेकिन मतलब आपका
नहीं,
कहने का मकसद ये है कि आप इस तमाम अरसे के दौरान आप ये सारी चीजें क्लेम कर सकते हैं, लेकिन
बिल्कुल
मिसाल के
बिल्कुल
तौर
आप
पे वो प्रॉपर्टी रेंट पर नहीं जाती। हमने कुछ हालात देखे गुज़श्ता अरसे में, जैसे
बिल्कुल
कोरोना के दौरान हो गया, या कुछ जगहों पर प्रॉपर्टी की प्राइसेस एकदम से गिरना शुरू हो जाती हैं, कुछ जगहों पर रेंटल डिमांड उस तरह की नहीं होती, और आप तकरीबन 6-7 माह के बाद, जिसमें जिसके दौरान जून था, या मतलब आपने कुछ पैसे क्लेम कर लिए और फिर आपको वो प्रॉपर्टी सेल आउट करनी पड़ी, तो उस सूरत में फिर क्या आपको करना पड़ेगा? वो जिन गुज़िश्ता 7 माह के लिए आपकी इंटेंशन रही वो दुरुस्त रहेगा, या उस चीज के आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा, आपको पैसे देने पड़ेंगे फिर भी वापस एटीओ को?
देखें देखें, आपकी इसमें एटीओ सबसे पहले आपकी इंटेंशन चेक करता है, ठीक है। इंटेंशन आपकी किस तरह चेक होती है, क्योंकि अगर एटीओ कभी भी आपके पास आता है, आपने एक्सपेंस क्लेम किया लेकिन वो रेंट आउट नहीं हुआ, फिर आपने सेल कर दी प्रॉपर्टी और आपने उसके ऊपर फिर आपको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। सही, तो उसमें इंटेंशन किस तरह चेक होती है कि आपके जो लोन डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, तो उसमें आपने लोन किस इन्वेस्टमेंट, अगर लोन लिया हुआ होता है तो आपकी डेट मीन कि आपकी इंटेंशन ये थी कि आपको उसको रेंट आउट करना था, बिकॉज ऑफ द मार्केट आपने लिस्ट आउट किया हुआ है, आपको कोई टेनेंट नहीं मिला, आपने आपके आप आपके ऊपर बहुत फाइनेंशियल बर्डन हो गया था, तो आपने सेल कर दी प्रॉपर्टी। सही, तो उसमें ये होगा कि ऑब्वियसली ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर अगर आपने इंटरेस्ट पे किया होगा, आपको इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हैं जब तक वो रेंट आउट नहीं हुई है, और इसी दौरान अगर आपने सेल कर दी है प्रॉपर्टी, तो जो भी आपके सेलिंग कॉस्ट हुई होगी आपको सेल मार्केट में सेल करने के लिए, तो आप वो एज अ कैपिटल गेन टैक्स में भी वो क्लेम कर सकते हैं। सही, तो उसका इम्पैक्ट आपका कैपिटल गेन टैक्स में आएगा।
बहुत शुक्रिया अवैस, इतनी तफसील में हमारे सामईन को ये तमाम मामलात बताने के लिए और SBS से बात करने के लिए।
थैंक यू, शुक्रिया आपका बहुत बहुत।
लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, तबसरा कीजिए, फेसबुक पर SBS उर्दू फॉलो कीजिए।